समाचारों में एंथनी एल्बनीसी की G7 शिखर सम्मेलन के इतर जो बाइडेन के साथ मुलाकात। अदानी ग्रुप पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक, कीमतों में कोई हेरफेर नहीं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान ब्रायन बूथ का निधन। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस आयुक्त कैरन वेब का कहना है कि एक बुजुर्ग महिला को उनके वृद्ध देखभाल गृह में एक अधिकारी द्वारा कैसे पीटा गया, इसकी जांच उचित तरीके से की जा रही है। 95 वर्षीय क्लेयर नाउलैंड को न्यू साउथ वेल्स में कुमा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बराबर देखभाल मिल रही है। वो एज्ड केयर फैसिलिटी में टेसर से घायल हो गई थी जब वो चाकू गिराने में नाकाम रही। ग्रीन्स ने घटना की आंतरिक पुलिस जांच की आलोचना की है और एक स्वतंत्र जांच की मांग की है, लेकिन पुलिस कमिश्नर कैरन वेब का कहना है कि जांच सही तरीके से की जा रही है।
We have a dedicated team working through a proper process from homicide squad led and overseen by the Law Enforcement Conduct Commission to make sure that this investigation is done properly. Mrs. Nowland and her family deserve that this is done properly. This will take time.
East Discrimination Commissioner Dr. K. Patterson, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है, उनका कहना है कि अपना कार्यकाल पूरा करने के साथ साथ वो जिस सबसे जरूरी अधूरे काम को संबोधित करना चाहती हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया में कानूनी व्यवस्थाओं में स्थायी मुख्तारनामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी। ये कानूनी दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को, आमतौर पर एक परिवार का सदस्य या देखभाल करता जो भविष्य में किसी व्यक्ति के वित्त, संपत्ति और चिकित्सा देखभाल का प्रबंधन करने के लिए प्राधिकृत करता है। जब ये माना जाता है कि उस व्यक्ति ने निर्णय लेने की क्षमता खो दी है। दस्तावेजों को नियंत्रित करने वाले नियम प्रत्येक ऑस्ट्रेलियन राज्य और क्षेत्र में भिन्न हैं। डॉक्टर के पेटरसन का कहना है कि परिणाम स्वरूप वित्तीय दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं और वृद्ध ऑस्ट्रेलियन लोगों को पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग से बचाना कठिन हो गया है। उन्होंने एसपीएस से कहा कि यह शर्मनाक है कि 6 साल पहले ऑस्ट्रेलियन कानून सुधार आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए तत्काल कार्यवाही नहीं की गई है ताकि पावर ऑफ अटॉर्नी पर एक से नियम विकसित किए जा सकें।
And all I saw in their communique was they noted a progress update in relation to enduring powers of attorney reform projects. That's not good enough. We need the attorneys to take the bit between their teeth and get on and harmonise these powers of attorney. We'll benefit everybody. They'll know what the rules are.
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जापान में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर आयोजित आज एक द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की। एंथनी एल्बनीसी और जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया और अमरीका के बीच जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। न्यू क्लाइमेट, क्रिटिकल मिनरल्स और क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्पैक्ट का उद्देश्य नेट जीरो एमिशन के लिए ट्रांजिशन की योजनाओं पर सहयोग को गहरा करना है। श्री एल्बनीसी का कहना है कि वो जो बाइडेन की भविष्य की यात्रा के लिए उत्सुक हैं क्योंकि अमरीकी ऋण सीमा पर बहस के कारण उन्हें सिडनी की एक योजनाबद्ध यात्रा रद्द करनी पड़ी थी।
I'm saddened that you are unable to come down next week, but I understand the circumstances that you're dealing with, and I would have done exactly the same thing. All politics is local. As you and I both understand, and I look forward at some time in the future to you visiting. You would always be a very welcome visitor in Australia, as you have been in the past as Vice President.
इससे पहले श्री अल्बनीसी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेश से भी मुलाकात की। दोनों ने जलवायु परिवर्तन का जवाब देने और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रयासों में बहुपक्षवाद बनाए रखने के बारे में बात की। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत के नेताओं के साथ आज G7 के शिखर सम्मेलन में क्वाड गठबंधन के नेताओं की बैठक आयोजित की है। क्वाड नेताओं की ये तीसरी बैठक आमने सामने है। इस सप्ताह के शुरू में इसका स्थान और समय बदला गया जब अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने वाशिंगटन में ऋण सीमा वार्ता के कारण अपनी एशिया यात्रा को छोटा किया। एजेंडे में सुरक्षित डिजिटल प्रौद्योगिकी, पनडुब्बी केबल, बुनियादी ढांचा क्षमता निर्माण और समुद्री डोमेन जागरूकता पर बेहतर सहयोग शामिल है। ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस उन सैकड़ों हजारों ऑस्ट्रेलियाई लोगों को चेतावनी जारी कर रहा है जो पैसा बनाने के लिए तथाकथित साइड हसल की तलाश कर रहे हैं। 9 लाख से अधिक लोगों के पास एक पक्ष उद्यम यानी साइड हसल है। जैसे जैसे जीवन यापन की लागत बढ़ती है, वैसे वैसे आय के इन अतिरिक्त स्रोतों की खोज भी होती है। टिमलो ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस में सहायक आयुक्त हैं और वो कहते हैं कि लोगों को अपनी आय को कम दिखाने से सावधान रहने की आवश्यकता है।
Social media influencers and people with side hustles is something that we're seeing more and more of. In fact, you know, hundreds of thousands of Aussies do have a second job, and the latest ABS statistics show over 900,000 people have a second job. So it is a growing area, and we want people to get it right the first time. So we're just reminding people to make sure they include that income in their tax return. So we're not talking about the old garage sale here. We're talking about people who are, you know, deriving, you know, regular forms of income on a regular basis.
और एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार भारत में हिंडनबर्ग केस की जांच के लिए नियुक्त की गई सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अदानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया। रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अदानी समूह की कंपनियों ने गैर कानूनी तरीके से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं और संबंधित पार्टी से निवेश में किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। कहा गया है कि पहली नजर में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं है और सेबी को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने हालांकि ये भी कहा है कि उनकी जांच रिपोर्ट के तमाम निष्कर्ष अंतिम नहीं है क्योंकि इस मामले में सेबी की जांच जारी है और उसकी रिपोर्ट आनी शेष है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमरीका के 66 सेंट और भारत के 55 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में ऑस्ट्रेलिया के 31वें मेंस क्रिकेट टेस्ट कैप्टन ब्रायन बूथ का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बूथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 29 टेस्ट खेले, 5 टेस्ट शतक बनाए और 1960 के दशक के शुरुआती दौर में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में एक महत्वपूर्ण शक्ति रहे। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में वो ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीम में भी थे। बूथ मेलबर्न क्रिकेट क्लब के आजीवन सदस्य थे। 1982 में क्वीन से एमबीई प्राप्त किया उन्होंने और 2014 में उन्हें क्रिकेट एनएसडब्ल्यू हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को पर्थ में मुख्यतः धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री। एडिलेड में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। मेलबर्न में बौछारों में राहत, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। होबार्ट में सुबह के समय बौछारें, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। कैनबरा में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 3 डिग्री। सिडनी में भी आंशिक रूप से बादल हैं, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। ब्रिस्बेन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। और डार्विन में भी धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।